श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 वैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषक क्षमा सागर जी ऐलक श्री 105 उदार सागर जी महाराज के मंगलमय प्रवचन दिनांक 17 जुलाई 1997।
अच्छे से सामने लाना चाहेंगे। जिसके करने के उपरांत हमें आनंद का आनंद है। ठीक इसी तरह जैसे ज्ञान की बात है सुन करेंगे, हम अच्छे से अच्छा आचरण कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े व्रत और उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, जितने भी चारित्रिक अनुष्ठान हैं उनको निष्ठा संपन्न करते हैं, लेकिन इसके करने के बावजूद भी हमारे भीतर में वो सुख और शांति नहीं आ पाती। इन सबके बीच कारण क्या है कि इतना ज्ञान इतना आचरण कर लेंगे के बावजूद भी हम वो आनंद नहीं पा पाते, हम वो सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते?
कौन सा फायदा होता है आपके लिए? अपनी कमियां किसी को बताना नहीं चाहते, जो हमारी कुछ गलतियां हैं उन्हें हम छिपाना चाहते हैं। छुपाने से ध्यान रखना गलतियां साफ नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। जब कोई घोड़ा हो जाए उसे यदि छुपाया जाएगा तो वो उतना ही और अंदर बढ़ता चला जाएगा, और यदि प्रकट कर दिया जाए उसे साफ सुथ कर दिया जाए तो वो घोड़ा ठीक हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा के सामने एक निर्मल भाव से खड़े होकर के हमें अपना परिचय तो देना चाहिए कि हम क्या हैं, वर्तमान में क्या है, क्या हमें होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, पापिष्ठेन गुणात्मना जर दिया, माया बिना लोभ बिना राग द्वेष मलिन सेन मनसा दुष्कर्मेयं निर्मितम्। राग द्वेष मलिन सेन मनसा, और मेरा यह मन मेरा यह चित्त राग द्वेष के मल से मलिन है, दुष्कर्मेयं निर्मितम्, और इसके माध्यम से मैंने इस तरह के दुष्कृत, इस तरह के दुष्कर्म अर्जित किए जिनके परिणाम स्वरूप आज संसार में हम भटक रहे हैं, चतुर्भुज योनि में जाकर के तरह तरह के दुखों को भोग रहे हैं। भगवान, ये वर्तमान का मेरा परिचय है, ये वर्तमान की मेरी अवस्था है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। त्रिलोक कार्यपति जिनेन्द्र भगवान आशीर्वाद मूल्य था, हे भगवान, हे तीन लोग के नाथ, मैं आपके सामने आकर के आज अपने किए हुए दुष्कृत्यों की मैं आलोचना करता हूं, बार बार निंदा गाना करता हूं कि ऐसे पाप मैंने की जिसकी वजह से मेरा जीवन इतना कलुषित हो गया, ऐसा दुष्कृत्यमय हो गया, विकृत हो गया। आपको लग रहा होगा कि समय सार जी ने तो कहा है कि आत्मा को शुद्ध के समान शुद्ध है, और आप कह रहे हैं कि आप रागी दोषी मायावी चल करती कलुषित हैं। बात समझ में नहीं आती क्या है? बहुत अच्छी लिखी है समय शांति ग्रंथ में आचार्य हेमचंद जी ने कहा है कि शब्द शुद्धा शुद्ध नया, संसार के समस्त पदार्थ शुद्ध में की अपेक्षा तो सारे शुद्ध हैं, कोई अशुद्ध नहीं। लेकिन जब हम दूसरे नए की व्यवस्था करते हैं, लगाते हैं, तो मालूम चलता है कि किसी नए की अपेक्षा यह अशुद्ध भी है। ऐसा मुश्किल से मिलता होगा जिस क्षण शायद हम पापों से मुक्त होते हैं। सुबह से शाम तक लेकर के क्रोध मान माया लोगों से चारों कसाय में से ऐसा समय नहीं रहता जब हम कोई कसाय नहीं करते। आप यदि मंदिर में भी आते हैं तो वहां भी कसाय होती है, बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुस्सा करते हैं, हमारी कसाय दूसरी होती। मंदिर में आकर के आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, किस पर करेंगे आप गुस्सा? घर में कर सकते हैं, परिवार में कर सकते हैं, और किसी से कर सकते हैं, मंदिर में किस पर करोगे? लेकिन वहां भी कसाय कर लेते, वहां दूसरे ढंग की कसाय है, वहां राग का उदय आ जाता है, वहां भी कसाय है। लेकिन कसाय कसाय करने में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। घर की कसाय हो सकता है कि आपके लिए मालूम नहीं किस किस तरह के कर्मों का बंद करा दे, हो सकता है कि आपके लिए तत्काल कटघरे में खड़ा करा दे, जेल भेज दे, हो सकता है तो कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे। लेकिन मंदिर में की जाने वाली कसाय से कोई आपके लिए चाटा नहीं मारेगा, कोई आपको ले जाकर के जिला बंद नहीं करेगा, कोई आपके लिए अपशब्द नहीं करेगा, क्योंकि जो आपकी कसाय है वो प्रशस्त कसाय है। भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति रूप जो अनुराग ये प्रशस्त है। तो सुबह से शाम तक लेकर के क्रोध मान माया लोभ से कोई ना कोई कसाय अवश्य ही होती रहती, इन लोगों में आकर के हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा है संसार के लोभ से परमात्मा को पाने का यदि लोभ हो तो उसे अच्छा माना जाता है। जो अपने आप को त्रिकालिक शुद्ध मान है अपने आप को शुद्ध के समान शुद्ध मान ले, उसे किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती, उसे किसी साधनों की आवश्यकता नहीं हुआ करती, क्योंकि वो स्वयं अपने साध सिद्ध कर चुका है। उस साध की सिद्धि हो जाने के बाद साधनों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। लेकिन यदि आप अभी साधनों के समीप जा रहे हैं, साधन का संग्रह कर रहे हैं, तो इससे पहले ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी आपके अंदर में, हमारे अंदर में बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए ही हम परमात्मा के सामने जाकर के खड़े होते हैं और अपना परिचय दे देते हैं, परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उनकी उस विकार मुद्रा को देख करके हम अपने आत्मस्वरूप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। हम उस परमात्मा के स्वरूप को पाना तो चाहते हैं, हम परमात्मा को भी पाना चाहते हैं और अपनी आत्मा को भी परमात्मा में बनाना चाहते हैं। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा करना हो तो हमारे अंदर में बैठी हुई कलमशताएं जो हमारी आत्मा को दूषित करती हैं, इन्हें दूर करने का उपक्रम हमें प्रारंभ करना होगा। अपने को पाने से पहले परमात्मा को पाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए, और जो परमात्मा को पा लेता है वही व्यक्ति अपने आप को पा पाता है। समय आपका हो रहा है, एक छोटी सी घटना सुना करके मैं अपने वक्तव्य को यही पूर्ण करूंगा, क्योंकि आप देर से आए हैं, साढ़े आठ का समय आप पौने नौ पर पधार रहे हैं। यदि ऐसा ही करेंगे तो वर्षा ऋतु भी प्रारंभ होगा ही नहीं है, और हो जाएगा तो जितनी देर से आप आएंगे उतना समय आपका चला जाएगा। जो शेष बचेगा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट वही दिया जाएगा। इस गोपाल मात्रमेना का महाराज जी का प्रवचन एक घंटे होगा, मतलब जब हम आएंगे तब से एक घंटे इस धोखे में मत रहना। 8:30 से यदि होगा तो 9:30 पर हर हालत में समाप्त कर दिया जाएगा। यदि आप 9:15 पर आएंगे तो 15 मिनट ही मिलेगा आपके लिए। इसलिए आप ध्यान रखना, आपके यहां बहुत बहुत संत आते हैं, हो सकता है कि उनको आपने अनुसार अपने अनुसार चलाने की कोशिश की होगी, लेकिन महाराज जी ने कल कहा था कि आपने मुसीबत ले ली है, वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत आपने खड़ी कर ली है। यदि आप समय से नहीं आएंगे तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, आपका भी होगा। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, वैसे हम लोग क्या लाभ देंगे, हम तो धर्म की चर्चा कर सकते हैं जिससे कि हम अपने लिए भी धर्म लाभ लें और आने वाला यहां निकट आने वाला व्यक्ति भी धर्म लाभ ले सके। यही भावना यहां रख करके आयोजन किया गया है, किसी को उद्देश्य सुनाने की भावना से कोई ये कार्यक्रम नहीं है। ये मत सोचिए कि महाराज जी तो प्रवचनकार प्रवचन करेंगे, ऐसी कोई आकांक्षा हमारे अंदर जीवित नहीं है। एकमात्र एक घंटे बैठ करके मैं अपना भी धर्म ध्यान करना चाहता हूं और यहां आकर के जो करना चाहते हैं उनका भी धर्म ध्यान होना चाहिए, इस भावना से प्रवचन रखा जाता है। यदि आपके अंदर में वास्तव में इतनी तीव्र प्यास जीवित है कि हमें आकर के यहां धर्म ध्यान करना है इन 4 माह के दौरान, तो आपको समय पर आना होगा और समय पर आप घर जाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा था समय की पहचानने की, समय का अर्थ आत्मा हुआ करता है और समय का अर्थ दर्शन और धर्म भी हुआ करता है। तो हम आत्मा की बात कर रहे थे कि हम आत्मा को पाना चाहते हैं, तो उससे पहले परमात्मा को पाएं, तो परमात्मा को पाने के पहले जो हमारे भीतर में कलमशताएं जमी हुई हैं उनको निकालना चाहेगी, उन्हें दूर करना होगा, तब कहीं जाकर के हम परमात्मा को अपने हृदय तक ला सकते हैं। एक बार एक किसी श्रद्धालु के मन में एक भावना उठी, मुझे परमात्मा को पाना है, मैं सत्य को पाना चाहता हूं, और उन लोगों से मिलता बार-बार कहता कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, कोई रास्ता हो तो बताओ। लोग तरह तरह के रास्ता बताते लेकिन उससे कोई हल नहीं होगा। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, यदि आप परमात्मा को पाना ही चाहते हैं तो अपने नगर के समय पूछना हो तो साधु भी यहां आता है, ये तय है। कोई साधु नहीं बताए आपके लिए मार्ग, संसार में रहने वाला कोई ग्रस्त क्या मार्ग बताया, वो स्वयं उसमें उलझा हुआ है। उस सुलझने का मार्ग क्या, डूबा डूबने वाला कभी डूबने वाले को नहीं बचा सकता, जो घाट पर खड़ा होगा वही डूबने वाले को बचाएगा, वो जो स्वयं डूब रहा है वो क्या बचाएगा। ऐसे ही जो स्वयं उलझा हुआ हो उस सुलझने का रास्ता क्या बताएगा, जो सुलझने के मार्ग पर चल पड़ा है वही कोई सुलझने का मार्ग बता सकता है। और उस दिन उस सज्जन ने कहा कि साधु के पास जाओ। वह व्यक्ति और श्रद्धालु साधु की कुटिया में गया और सबने प्रणाम निवेदित करते हुए उनके चरण सानिध्य में बैठ गया, निवेदन किया, गुरुवर मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, परमात्मा को मैं अपने भीतर पाना चाहता हूं, कोई रास्ता हो तो प्रशस्त करें। साधु जी ने कहा आप तो देर से आए हो, समय बहुत हो गया, कल प्रातः है, सूर्य जैसे ही अपनी रश्मियों से पृथ्वी को आलोकित करे उसी क्षण आप यहां आ जाना, आप और हम चल करके सामने वाली पहाड़ी पर परमात्मा का एक मंदिर बना हुआ है, वहां जाकर के परमात्मा के हम तुम्हें दर्शन अवश्य करा सकते हैं। वो श्रद्धालु घर चला गया। दूसरे दिन जैसे ही सूर्य निकलने वाला था वो साधु की कुटिया पर पहुंच गया। साधु जी से कहा कि चलिए गुरुवर हम तैयार हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए। साधु ने कहा कि देखो बस एक काम थोड़ा सा कर दो मेरा। बोले क्या, ये पुटली है, इस पुटली को हमें वहां तक ले चलना है और तुम इस पुटली को अपने सर पर रख लो, अपन दोनों चलते। तो श्रद्धालु तैयार हो गया। क्या बताता है, साधु जी की पुटली है, इतना बड़ा काम करा रहा है, दर्शन करा रहा है, तो पुटली सर पर रखने में क्या जाता। साधु जी की द्वारा दी गई पोटली सिर पर रख ली और दोनों आगे बढ़े। सामने एक पहाड़ी थी, वो पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था। साधु जी और श्रद्धालु दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे, लेकिन पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि उस पर चढ़ना मुश्किल था। थोड़ी ही दूर चला होगा वो श्रद्धालु और उस पोटली का इतना वजन था तो उससे चला नहीं जा रहा था। तो साधु जी से कहा कि गुरुवर अब मुझसे चलाने जा रहा है, इस पोटली में बहुत वजन है, इसको लेकर के मुझसे ही चला जाता है, कुछ आप कम हो सके तो करा दीजिए। पोटली खोली और उसमें से एक पत्थर निकाला, इतना बड़ा उबार फेंक दिया। वो कहा आपको हल्का हो गया ना, हाँ ठीक है, थोड़ी दूर और चला लेकिन फिर भी नहीं चला जा रहा। फिर उसका वजन कम किया गया तो एक पत्थर और निकाल के अलग कर दिया, लेकिन पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन था। कहते हैं कि एक एक करके उसमें से तीन चार पत्थर निकाल दिए गए। जब उस पोटली में से चार पत्थर निकाल दिए गए तो पोटली में कुछ भी नहीं बचा और श्रद्धालु और वे साधु जी दोनों आसानी से पहाड़ी पर पहुंच गए। मंदिर में पहुंचे तो वो श्रद्धालु बोला कि गुरुवर अब परमात्मा के साक्षात दर्शन कराइए। तो साधु कहते हैं जब तुम चार पत्थर अपने सिर पर रखकर के इस पहाड़ी पर नहीं चल सकते, इस पहाड़ी के शिखर पर नहीं पहुंच पाए, तुम्हें एक एक करके सारे पत्थर फेंकने पड़े तब जाकर के तुम इस पहाड़ी पर आ सके और तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो और तुम अपनी आत्मा के ऊपर क्रोध मान माया लेते हो, बड़े बड़े चार चार पत्थर रखे हुए हो जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा इतनी दबी जा रही है, तुम पर चले जाएंगे उतने उतने हम परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे, परमात्मा का दर्शन होता चला जाएगा और परमात्मा का दर्शन ही हमारे समृत हमारे श्रद्धान समीचीन आस्था का एक रूप है जिसे हम प्रारंभ करके परमात्मा से विचारता का पाठ पढ़ करके हम अपनी आत्मा तक आ सकते हैं और अपनी इस कलुषता को धोने के लिए अपने पूर्व कार्मिक जो कर्म हमें साफ करने के लिए एक सच्चा समीचीन मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं अपना यह वक्तव्य ही पूर्ण करता हूं। भगवान महावीर स्वामी की
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताही जाते भये अर्हंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप विस्मृतु में जल हे सयाने पूजे सतत केवल ज्ञान पाने पूजे सतत केवल ज्ञान
बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज कल जो हम सब यहां बैठ करके कुछ बातें अपने जीवन की समझ रहे थे ये समझा था कि हमारी अपनी मानवता हमारे अपने जीवन की मानवता इसमें है कि हम पहचाने कि जो जैसे जितने हम यहां हैं उस सबकी हम जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम ये स्वीकार कर सकें द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ मी
जो शुरुआत के अनुसार है उसमें सुरक्षा
लिखा है आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्णमात्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयूक्त। यहां से शुरुआत करें, लगता तो है कि बहुत कठिन है, नहीं लेकिन यही तो हमारे साथ है कि हम कठिनाइयों को आसान करना है। यही तो हमें करना है पूरे जीवन, क्योंकि हमने खुद अपने जीवन को बहुत कठिन बना दिया है, हमें उसे आसान करना है। वो आसान है एक्चुअली, कठिनाइयों को छोड़ दीजिए। जैसे कोई कहे कि मुट्ठी खोलने का क्या उपाय है, तो मुट्ठी खोलने का क्या उपाय है, आप बांधने का उपाय छोड़ दीजिएगा तो वह तो खुलेगी। कोई ट्राई चोरी करना है खोलने की, वो तो खुली थी, आपने कोशिश कर करके उसको बांधा है, आप खाली छोड़ दीजिएगा तो खुल। ठीक है, सही हमें कभी आपने सोचा कि किन किन चीजों से हमें शांति मिली और क्या वो शांति हमें शाश्वत रह पाई? शायद कभी नहीं सोचा होगा। आइए अपन सोचें, एक साथ बैठ करके सोचना भी बड़ा मजे का, अकेले अकेले तो कभी सोचते हैं अपन बैठ के, और अपन एक साथ बैठ के सोचते हैं। एक प्रकार की शांति तब मिलती है अपने जब कोई शरीर में व्याधि हो जाए और कोई मेडिसिन अपन ले और थोड़ी सी उसमें राहत मिल जाए और कोई पूछे कि वो जो सुबह तकलीफ थी अब आप कैसा फील कर रहे हैं, हम कहते हैं शांति। वो जो सुबह 106 डिग्री बुखार था, शाम होते ना होते वो जो 99 और 100 हो गया, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, पर कोई पूछे तो कहते हैं अब तो साथ आया, शांति है। एक शांति ये भी है, बहुत भूख लगी हुई थी और लगता था कि जीवन ही मुश्किल है और थोड़ा सा खाना पेट में गया, अभी कोई पूरा भरा नहीं है, क्या कह देते हैं या कि मर जाने के बाद अब शांति है। लेकिन ये शांति कितनी देर टिकती है? शाम को फिर भूख लगाई, 3 घंटे के बाद फिर लगाएंगे, फिर एक अशांति। अशांति निरंतर है, उसका थोड़ा सा उपाय कर लेते हैं हम और उसी को मान लेते हैं कि शांति। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को जुटा करके एक शांति हम निरंतर पाते आ रहे हैं, ये हमारा भ्रम है क्या? नहीं, अभी नहीं कहेंगे कि भ्रम है, अगर अभी से भ्रम कह देंगे तब तो फिर कोई भी प्रश्न उठ जाएगा कि वह अभी हम खाना आप भी उठेंगे 10 बजे आहार करके आएंगे तो अगर अशांति नहीं होती तो गए आहार के लिए जाते, उस अशांति को मिटाने के लिए तो जाएंगे। ये भ्रम तो नहीं है, पर किसी ऊंचाई पर बैठे ज्ञानी से पूछे तो वो तो कहेगा कि भ्रम में हो, लेकिन अभी पता नहीं लगे। जब तक हीरे की परत न हो तब तक कांच के टुकड़े को दबाए दबाए फिरते रहते हैं, कोई पूछे तो कहते हैं हीरा है, और अगर कोई कहे कि हीरा नहीं है तो मानते हैं क्या? नहीं मानते तो थोड़ा पारखी बन जाओ, तो अपने आप फेंक दोगे, कचरा घर में फेंक के आ जाओगे, कह रहे हम इतने दिन से भरे हुए थे वो तो बेकार निकला। बस इतना ही करना है आपने, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप भ्रम में हैं, जिस दिन आप रियलाइज करने लगे उस दिन आप खुद आगे बढ़ जाएंगे और वो पीछे छूटता जाए, पर होता ही ऐसा। हम देखें कि ये इस प्रकार की शांति हमने कई बार पाई है। एक दूसरे प्रकार की शांति भी है जब हम अपनी जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर ले तब तब भी हम बड़ी शांति महसूस करते हैं। कैसे? ये तो सबके जीवन में होगा अनुभव। अब तो खैर प्रक्रियाएं बदल गई हैं, बिटिया को लेकर के जाना पड़ता है जहां उसकी शादी करना पड़ती है, पहले जमाना हुआ करता था जब लोग शादी करने के लिए आया करते थे, जिसकी बिटिया होती थी वो उसको सौंप करके और बड़ी शांति महसूस करता था। अब तो प्रक्रियाएं बदल गई तो शायद इस प्रकार की शांति पर आज भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की शांति महसूस करते होंगे कि जो बिटिया की शादी करती और शाम को आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं और लोग आए और पूछ रहे हैं कि क्यों भाई कैसा है, कहना अब शांति है, तो क्या बिटिया की वजह से अशांति होती? का शांति नहीं होती लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी वजह से अशांति तो होती नहीं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी जो लगती थी कि हमने अपने बच्चों के प्रति जो हमारा कर्तव्य था वो पूरा किया कि नहीं किया, वो कर्तव्य जैसे ही पूरा हो जाता है तो एक बीच हम रहते हैं या कि समाज जिसके बीच हम रहते हैं या कि देश जिसके बीच हम रहते हैं उसकी जो जो जिम्मेदारियां हैं उनको हम जो पूरा करते हैं तब जो एक प्रकार की शांति महसूस होती है वो दूसरे प्रकार की शांति एक और शांति है जब हम रास्ते से चले जा रहे हैं और कोई अपरिचित व्यक्ति है और उसको चोट पहुंच गई है और हम देखते हैं हमसे रहा नहीं जाता और हम उसको उठा करके एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में और फिर रोज सुबह शाम जब टाइम मिलता है तो उस अपरिचित व्यक्ति का हालचाल पूछने चले जाते हैं और जब वो ठीक हो जाता भला चंगा हो जाता हफ्ते भर में मैं शायद आज से ये 20-25 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ आज वर्तमान पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं कुछ लोग होंगे जो ऐसा ऐसी शांति पाने के लिए भी कोशिश करते होंगे नहीं तो बाकी लोग तो वो कहेंगे कि हम गिर गए होंगे गिर जाओ कहाँ हम तुम्हारी सेवा में और हमारी भी गृहस्थी लगी हुई है तो छोड़ छाड़ के भी चले जाते हैं मनुष्य को मनुष्य मैंने जितनी पीड़ा पहुंचा सकता हूं वो शायद आज पहुंचा रहा है। खैर अपन शांति की बात कर रहे थे कि एक एक प्रकार की शांति हम वो भी लाते हैं जब हम दूसरे को उपकार करते हैं जब वो हफ्ते भर में व्यक्ति थोड़ा सा ठीक हो जाता है और हमसे प्रेम से बोलता है और हमसे कृतज्ञता ज्ञापित करता है तब कैसा लगता है तब एक शांति मिलती है कि चलो एक समाज के प्रति एक राष्ट्र के प्रति एक प्राणी मात्र के प्रति जो हमारा दायित्व था वो भी हमने पूरा किया शरीर का दायित्व पूरा किया तब शांति मिली परिवार के दायित्व पूरे किए थोड़े आगे बढ़े तब शांति मिली और फिर प्राणी मात्र के प्रति जो हमारा दायित्व था वो पूरा किया तब भी शांति मिली। इस प्रकार की शांति तो हमने कई कई बार पाई है लेकिन ये शांति शाश्वत नहीं है। चौथे प्रकार की शांति पाने के लिए तो हम यहां तक भागते चले आए हैं जो इन तीन में निष्णात हो गए हैं उनके लिए कहूंगा मैं चौथे प्रकार की शांति जो इन तीन में भी निष्णात नहीं है वे कोशिश करें इन तीन प्रकार की शांति को पाने की कोशिश करें तभी चौथे प्रकार की शांति की बात हो सकेगी। मैं कर तो लेता हूं आपसे लेकिन आप फिर कब करेंगे जब इन तीन में निष्णात हो चुके जो दूसरे आत्मा को आत्मा नहीं मानता और सिर्फ अपनी ही कोशिश अपनी ही फिक्र में लगा हुआ है उसे अपने आत्मा की शांति मिले मैंने तो आज तक कहीं देखा नहीं भाई कहीं पढ़ा नहीं। मोक्षों के तीन भेद किए हैं मुक्त मोक्ष मोक्ष जो मुक्ति की इच्छा रखता है जो शांति पाने की इच्छा रखता है उसकी तीन वैरायटी है। पहली है कि जो परोपकार करता है पर परोपकार में ही अपना आत्मा का उपकार मान देता है वो पहला प्रकार का मोक्ष है। दूसरे प्रकार का मोक्ष है जो अपने आत्मा का उपकार करता है और साथ साथ पर का भी उपकार करता है पर अपने आत्म उपकार को प्रायोरिटी देता है वो दूसरे प्रकार का मोक्ष है। तीसरी स्थिति जब इन दो से पार हो जाता तब तीसरी स्थिति आती है कि पर के उपकार का उसके भीतर जरा भी अहंकार नहीं है वो तो सिर्फ अपने आप उपकार में लगा। आप कहां बैठे हुए हैं पहले ये देख लीजिए यहां बैठना है चतुर्मास अगर होगा तो आखिरी आखिरी तक कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। मैं सोचता हूं मैंने इसलिए कहा था कि मुश्किल तो खड़ी कर रहे हैं वहां कहां बैठे हुए हैं थोड़ा सा ऊपर उठिए आगे आने वाले दिनों में यही कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा ऊपर उठें। कब तक सुनते रहिएगा ये सारी चीजें कब तक किस किस के आश्रित रहिएगा किस किस को बुलाते रहिएगा कि चार बातें सुनाइए अपने जीवन को इस तरह कर लीजिएगा कि अपने जीवन से स्वयं शिक्षा लीजिएगा और अपने गुरु आप स्वयं बन जाइए। लेकिन बिना दूसरे को गुरु बनाए कोई गुरु नहीं बन सकता ये ध्यान रखो ऐसे किसी धोखे में नहीं रहना। चौथी प्रकार की शांति की बात करूं जो मैंने एक श्लोक बोला था वो समय सार कलश का है आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम। अभी तक तो हमने जो तीन प्रकार की शांति पाई है वो पराश्रित है दूसरे के द्वारा मिलती है लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्णमात्यंत विमुक्तमेव वो एक है अपने आप में पूरा है संतुष्ट है विलीन संकल्प विकल्प जालम। लेकिन तब वो स्थिति प्राप्त होगी जब संकल्प और विकल्प का जाल ये हटेगा। और हम दिन भर में क्या करते हैं भैया सिवाय संकल्प विकल्प के अपना पराया जो हमारा है वो देखिएगा कि दिन भर में इसके अलावा कुछ किया क्या। मैं भी आत्मनिरीक्षण करूंगा शाम तक, आप अपने से आराम मत मानिएगा, जो आपसे कह रहा हूं वो सारे में मैं देखूंगा, आपके साथ देखूंगा। हम सब यहां पर एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक मंजिल तक पाने के लिए हम मार्ग से गुजरने वाले लोग हैं, और आपस में बैठ करके एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं। कोई थोड़ा सा आगे निकल गया है, कोई उसके और पीछे है, कोई ने अभी चलना शुरू नहीं किया है, पर चलना सबको है, और अपने अपने चले ही सब पहुंचेंगे, दूसरे के चले कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का वो जो चौथे प्रकार की शांति हम सबको पानी जो यहां तक हमें खींच करके लाई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे कहूं और बस। तीसरे प्रकार की शांति का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो शायद चौथे प्रकार की शांति जो विकल्प और जाल से मुक्त होने पर प्राप्त होती है, जो भले ही थोड़े क्षण के लिए होती लेकिन शाश्वत होती है, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ एक लाइन, मेरे ग्रह धन गो धन प्रभाव दूसरी लाइन, इतना ही तो है। पहले मैं मानता हूं कि मैं सुखी हूं, मैं दिखूंगी, मैं ऐसा हूं, मैं डॉक्टर हूं, किसी से भी पूछो वो परिचय सबसे पहले क्या देता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेस मैन हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, या कि मैं टीचर हूं प्रोफेसर हूं, ये तो परिचय देते हैं। तो हमने ऐसा मान लिया, ऐसा संकल्प कर दिया है, तो फिर विकल्प का जाल शुरू हो जाता है। जब मैं डॉक्टर हूं तो एज ए डॉक्टर मुझे अपने को मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ, फिर स्टेटस पॉइंट डेवलप होता है। अब चूंकि मैं ऑफिसर हूं तो फिर भले ही तनख्वाह 2-3 हजार मिलती हो पर मैनेज तो मुझे अपनी फैमिली को एक ऑफिसर की तरह करना पड़ेगा, तो फिर ऑफिसर की तरह मैनेज करने के लिए 10 हजार रुपये चाहिए पड़ेंगे, तो 10 हजार रुपये कैसे आएंगे, 3 हजार के अतिरिक्त 10 हजार कैसे आते हैं सब जानते हैं, फिर वो सारी प्रक्रिया शुरू होगी। यही हुआ संकल्प विकल्प का जाल, और इससे अतिरिक्त कोई चीज है क्या, दिन भर यही करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि हम ऐसे हैं, और एक भ्रम, एक जो साइकोलॉजी में परसोना कहलाता है, एक हम अपना मुखड़ा अपने ऊपर लगा लेते हैं और फिर उसी के अनुसार बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और एक विकल्प जाल शुरू हो जाता है। हमें इसको तोड़ना, हमें संकल्प को विकल्प को दोनों को तोड़ना है, तो हम वास्तव में हैं क्या, ये पहले हमें समझ लेना पड़ेगा। तब तक हमें कोई मुखड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई फेस नहीं, हमारा ओरिजिनल फेस हमें दिखाई पड़ जाना चाहिए, तो फिर ये सारे जो फेस हमने लगा रखे हैं वो सब अपने आप हट जाए। मैं आपसे जो कह रहा था कि चौथे प्रकार की शांति पाने के लिए इतने संकल्प विकल्प के जाल से मुक्त होना पड़ेगा, उसके पहले तीसरे प्रकार की शांति जो स्टेज है, जो अपने शरीर की चिंता छोड़ देता है, जो अपने परिवार की चिंता से ऊपर उठ जाता है, यानी उस कर्तव्य चिंता छोड़ देना मतलब ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि घर छोड़ करके और बाहर निकल गए और हो गए मुक्त घर से, नहीं, भीतर बसा रहता है वो, छोड़ देने के बाद भी बहुत जो घर कर जाए उसी का नाम घर, और जीवित चूने से बनता वो मकान, इतने तरह के मकान और घर में भीतर घर कर जाता है वो छोड़ना बहुत कठिन होता है। पहले शरीर से आसक्ति छोड़ना पड़ती है, फिर उसके बाद जो हमने पसारा ये फैला के रखा है उसकी आसक्ति कम करनी पड़ती, तब हम दूसरी स्टेज में पहुंचते, और तीसरा फिर प्राणी मात्र के प्रति जो थोड़ी सी करुणा का भाव रह जाता, जिसकी बात मैं आज आपसे करूंगा, तब आपको चौथे प्रकार की चीज सामने समझ में आने वाली है। एक छोटी सी घटना और फिर अपन यही विश्राम करेंगे। विश्राम इसलिए करेंगे क्योंकि चौथे प्रकार की शांति इतनी आसान नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, टीम में निष्णात हो जाइएगा तो बताऊंगा फिर आगे आने वाले समय। क्या हम इससे आगे बढ़ चुके हैं ये आज आप देखेंगे। कुछ थोड़ी सी देर जब हम अपने शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं, फिर क्या हमें शरीर का भ्रम रहता है, अगर नहीं रहता है तो हम जीत गए। जब हम अपने घर के दायित्व से मुक्त होते हैं तब उन क्षणों में कैसा हम फील करते हैं ये हमें देखना है, और फिर उसके बाद जब हम बाहर जो हमारे दायित्व हैं प्राणी मां पितृ प्रति उनको पूरा करते हैं तब कैसा फील करते हैं, इसके बाद तो अगर ये तीन चीजें आपके भीतर आ गई तो मुझे बहुत आसान हो जाएगा कि आपको जरा सा इशारा करूंगा और आप उस शांति को पा लेंगे जिसको पाने के लिए आज तक हम भटकते रहे। एक साधु था, मैंने थोड़ा सा अतिक्रमण किया है, 4 मिनट ज्यादा हो गए 9:30 से आज, चूंकि आपने भी किया है इसलिए मैंने भी किया है, कल से आप भी नहीं करेंगे मैं मान के चल रहा हूं तो मैं भी नहीं करूंगा। पहला मैं आपका साथ दूंगा फिर मैं आपका साथ नहीं देंगे, आप करेंगे पर मैं नहीं करूंगा, ठीक है? आप कहेंगे कि ठीक है, इसका मतलब आप करेंगे ठीक है, आप भले मत करिए हम तो करेंगे, ऐसा कहिए या तो गाना नहीं करें तो ऐसे नहीं आएगा कि लोग आते चले जा रहे हैं और बैठते चले जा रहे हैं। जैसे कि अच्छा कभी आपने ऐसा फील वगैरह में किया नहीं किया हो, टिकट लगती ना जो हम लोग 10 रुपए की टिकट लगती है वो 7 लेने चाहे 5 रुपए कोई जीरो हो लेकिन 5 लेने बैठ जाए, टेलीविजन के सामने 5 मिनट पहले बैठ जाते हैं जब सीरियल आना शुरू होता है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, इसी से मालूम पड़ता है। बच्चे को तैयार करते हैं कितने समय से, कितना पंक्चुअल होकर के हम तैयार करते हैं, समय से भेजते हैं, लेकिन हमारे पास मंदिर जाने का कोई समय निर्धारित नहीं, हमारे पास अपने आत्मकल्याण का एक समय निर्धारित नहीं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा तो नहीं लगता, वो मुझे कहता है कहिएगा, कोशिश करिएगा कि हम पंक्चुअल हों और समय के साथ चलें, समय को जो जानता है शायद वही आत्मा को पहचानता है। मैं आपको घटना सुना रहा था, बहुत छोटी छोटी घटनाएं कैसी गहरी प्रेरणा देती है, हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं रहती हैं, पर मुश्किल यह है कि हम उनसे कोई शिक्षा नहीं ले पाते हैं, लेते भी हैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए लेते हैं और भूल जाते हैं। एक साधु था और बहुत शांत रहता था, वैसे साधु की का क्राइटेरिया जो है उसकी पहचान ही ये है कि वो हर स्थिति में एडजस्ट करता है और शांत रहता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों स्थितियों में शांत रहे, संतरा धारण करे। और वो साधु लगभग उस स्थिति तक पहुंच चुका था, वो एक दिन भिक्षा के लिए गया, तो भिक्षा के लिए एक सोने का काम करने वाला व्यक्ति था उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा, दुकान भी बंद थी उसकी और घर भी बंद था, वो दुकान में काम कर रहा था, वो काम क्या कर रहा था, माला के दाने बन रहा था सोने के गोल गोल। साधु आकर के जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने अपना काम रोक दिया, उसने कहा कि आइए पधारिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, शायद आप भिक्षा पे निकले हैं तो आप भिक्षा लेकर के ही जाइए, मैं अभी आता हूं। अतिथि देवो भव, शुरुआत तो होती वैसे मातृ देवो भव, फिर अतिथि देवो भव, वो इस चीज को जानता था, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेना बहुत आसान है, अपने परिवारजनों की आवश्यकताएं पूरी कर लेना भी आसान है, लेकिन प्राणी मात्र की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए कोई मन बनाना उतना आसान नहीं है, बहुत जल्दी नहीं छूटता, लालच जाता नहीं, हमने कमाया ऐसे ही फोकट दे रहे, भीतर गया वो और व्यवस्था में लग गया कि साधु जी को कोई भिक्षा की चीज लेकर क्या, लेकिन इतने में मालूम क्या हुआ, वो जो सोने के दाने वैसे ही छोड़ के गया था, किस विश्वास के मारे छोड़ के गया था कि साधु जी हैं, उनके अंदर इसको उठाने का लालच तो आएगी नहीं, तो ऐसे छोड़ के चला गया था। और जब वापिस लौट के आया तो सबसे पहले कितना भी विश्वास हो भैया, लेकिन पहले साधु को दृष्टि नहीं गई, पहले वो जो सोने के दाने छोड़ के गया था, भीतर थोड़ा विकल्प तो चल ही रहा था कि छोड़ के आया हूं, बड़ा दुकान खुली पड़ी है, बड़े साधु जी बैठे हैं कोई तो नहीं उठाएगा, पर जैसे ही सबसे पहले साधु पर दृष्टि नहीं गई, वापिस भिक्षा हाथ में है और साधु पर दृष्टि में डाल करके सोने के दानों पर गई और वहां सोने के दाने गायब थे। मुश्किल खड़ी हुई। वो भूल गया कि कोई साधु यहां बैठा हुआ है और वो भिक्षा भिक्षा लेकर के भीतर से आया। वो सोने के दाने ज्यादा कीमती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दो प्रकार की शांति उसने कई बार पाई होगी, तीसरे प्रकार की शांति पाने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन अभी दूसरे प्रकार की शांति में निष्णात नहीं है वो। उन क्षणों में उन आशक्तियों को नहीं तोड़ सका है जो कि परोपकार करने की तीसरे प्रकार की शांति से, तीसरे प्रकार से मिलता है, वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। वो अगर सेवा करता सीधे वहां आकर के बिना दाने देखे और साधु को देख के भिक्षा देने में लग जाता तो तीसरे प्रकार की शांति का लाभ होता, लेकिन अटक गया, अटक गया सोने के दानों में। कहां गए दाने? साधु जी आपने देखा कोई ले तो नहीं गया? क्या कहें साधु, ये भी नहीं कह सकते कि कोई ले गया। किसके बारे में? जो ले गया है उसको बताया नहीं जा सकता। चुप, मुझे नहीं मालूम, ये भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, चुप। तो थोड़ी सी गुस्सा है, आप बोलते क्यों नहीं, कौन ले गया? अब साधु साधु नहीं दिख रहा है, अब वो चोर मालूम कर रहा है। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी श्रद्धा पूर्वता होती है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले साधु मान करके पूरा रिस्पेक्ट दे रहे थे, अब वो चोर मालूम कर रहे हैं। आखिरी ने तुम्हें ले ली है, कमांडर दिखाइएगा। यहां तक पहुंचा भी कमांडर दिखाइएगा, देख लियो कमांडर जो रखा हुआ था नहीं है, कहां छुपा दिया आपने, बताते हैं या नहीं बताते? नहीं बोले, नहीं बोले तो अब जो है कषाय तो कषाय है। हिला करके देखा दो तीन बार, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बुलाऊं बाहर लोगों को, ठीक कर देंगे वो, तब भी बोलोगे? अब वो क्या बोले, बुला लिया आसपास 10-20 लोगों को, अब तो गालियां देना शुरू कर दिया, तब भी चुप, मारना शुरू कर दिया तब भी चुप। अब मारने से भी शांति मिलती होती तो मिल जाती, कहां मिलती है शांति? नहीं मिली, खूब मार पीट करने के बाद भी मन नहीं भरा, पत्ती धूप थी तो एक चमड़े का टुकड़ा गीला करके माथे से कस के बांध दिया। अब बताएगा, अब वो चमड़े का टुकड़ा धूप पड़ने से धीरे धीरे सूख करके और माथे पर कसने लगा, पीड़ा भारी होने लगी, लेकिन साधु तो चुप तो चुप। अगर बोल पड़े तो साधु क्या, निष्प्रतिकार। शाम होने को हो गई, धूप में चुपचाप बैठे हुए हैं, माथा कसता चला जाता है, हल्की सी बेहोशी की स्थिति बनती है, लेकिन न दानों का पता लगा है, न कहीं कोई शांति का एहसास हो रहा है। थोड़ी देर में पक्षी वापस लौटे सामने वाले पेड़ पर। पक्षी जब वापस लौटे और उन्होंने जो है वीट करना शुरू की, तो उस बीट के साथ में सोने के गोल गोल दाने गिरना शुरू। वह जो दुकान पर बैठा सोने का काम करने वाला था, उसने देखा कि मामला क्या है, जाकर के पास में देखा तो ढेर सारे बीट के साथ दाने थे, सबको पहुंच करके ले आया। अरे अब साधु फिर से साधु मालूम पड़ने लगे, अभी तक चोर मालूम पड़ रहा था, अब साधु मालूम पड़ने लगे। अरे आपने पहले क्यों नहीं, अब तो जो है फूट फूट करके रोने लगा, दाने हाथ में आ गए हैं, अब फूट फूट के रोने लगा कि मैंने आपके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, और उस शांति को, जिस शांति को आपने उस क्षण पाया, चौथे प्रकार की शांति को आपने जिस क्षण पाया, मैं तो तीसरे से भी चूक गया जो आपको भिक्षा देकर के मुझे मिलने वाली थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो जो आपको भिक्षा देकर के मुझे उपकार करने की शांति मिलने वाली थी, वो शांति भी मेरे हाथ से चली गई, और आपने जो चौथे प्रकार की इन चरणों में शांति पाई है, विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो फ्युति। आप संकल्प विकल्प के जाल से मुक्त होकर के जो आत्मस्थ होकर के शांति पाते रहे उसको भी मैं चूक गया और उन थोड़े से दानों की आसक्ति में चिपक गया। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, आपने पहले क्यों नहीं बता दिया, आप थोड़ा सा पहले बता देते हैं। अब देखना, जब जब शुद्ध उपयोग से नीचे आता है तो शुभ उपयोग में आता है आत्मा। अब शुभ उपयोग की दशा में आ गए हैं महाराज और धीरे से कहा कि भैया तुमने जो मुझे पीड़ा पहुंचाई वो तो मेरे कर्मों के आश्रित थी, सो मैंने उसको भोग लिया, लेकिन यदि मैं उसका नाम बता देता तो उसको तुम जो मेरे साथ व्यवहार किया अगर वैसा करते तो मेरे से वो तो बर्दाश्त नहीं, ये तो मैंने फिर भी बर्दाश्त। तुम पक्षी के साथ जो व्यवहार करते शायद वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे साथ जो तुमने व्यवहार किया वो तो मैंने बर्दाश्त किया। दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लागू पड़ रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही और अपनी पीड़ा आसानी से बर्दाश्त कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो निष्णात हो गए हैं परोपकार में और वे अपने आत्मा के उपकार में लगे हैं और आत्मस्थ होकर के जब फील करते हैं तब चौथे प्रकार की शांति को फील करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पर पीड़ा से कांपर हो जाते हैं। क्या हम ऐसा कोई उपाय करेंगे अपने शरीर अपने परिवार और जहां जहां हमने अपनी आसक्तियां डाल रखी हैं वहां से थोड़ी सी अपनी ग्रिप कम करेंगे, आसक्ति कम करेंगे और तीसरे और चौथे प्रकार की शांति की तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे। मैं भावना बहता हूं कि हम सब इस चीज को अनुभव करके और जरूर से पाने की कोशिश करेंगे उस अपने आत्मस्वरूप को जो कि समस्त विकल्प जालों से मुक्त है, थोड़ी देर के लिए आप जरूर अनुभव करें ऐसी भावना के साथ में। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी।